ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बजट सत्र के दूसरे दिन आज विधानसभा में अघोषित बिजली कटौती, बिलासपुर जिले के लोफंदी में शराब पीने से हुई मौतों के साथ ही अरपा नदी में प्रदूषण के मामले गूंजे। आबकारी घोटाले मामले की जांच के संबंध में ईडी की टीम आज रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंची। बीजापुर जिले में 23 लाख के 4 इनामी सहित 9 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और प्रदेश की 33 जेलों में बंद कैदियों ने आज प्रयागराज से लाए गए गंगाजल से किया स्नान। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में आज करीब 19,762 करोड़ रुपए की राशि का तृतीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक भी आज ध्वनिमत से पारित हो गया है। सदन में आज विपक्ष ने ध्यानाकर्षण के जरिए बिलासपुर जिले के लोफंदी में मादक पदार्थों के सेवन से हुए 9 लोगों की मौत का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने कहा कि प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जिससे पीने से इन लोगों की मौत हुई है। जवाब में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय विशेष टीम गठित की गई है, इसकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। उपमुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने हंगामा करते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। आज विपक्षी विधायकों ने प्रदेश में हो रही अघोषित बिजली कटौती का मुद्दा भी उठाया और इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के जरिए चर्चा कराने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने कहा कि प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती हो रही है, जिसके कारण किसान परेशान है। बाद में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने विपक्ष के इस स्थगन प्रस्ताव को आग्रह कर दिया। आज सदन में ध्यानाकर्षण के जरिए सत्ता पक्ष के विधायकों ने अरपा नदी के दूषित होने का मुद्दा उठाया। बिल्हा के विधायक धर्मलाल कौशिक सहित अन्य विधायकों ने कहा कि बिलासपुर शहर की लगभग 70 नदियों का गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के अरपा नदी में पहुंच रहा है, जिससे नदी का जल दूषित हो रहा है। इस पर उपमुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने सदन में घोषणा की कि अरपा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए परियोजना बनाकर काम किया जाएगा। राज्य विधानसभा में आज सत्ता पक्ष के विधायक राजेश मूढ़त ने पिछले वर्ष राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता पर सवाल किया। इस पर विभागीय मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब देते हुए सदन को बताया कि इस मामले में 5 सदस्यीय दल की जांच रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके कुछ बिंदुओं पर गृह विभाग से जांच कराई जा रही है। वहीं सत्ता पक्ष के ही विधायक धर्मलाल कौशिक ने सदन में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सवाल किया। इस दौरान उन्होंने अभियोजन की स्वीकृति में देरी को लेकर भी सवाल उठाया। श्री कौशिक के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य प्रशासनिक सेवा के 255 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 251 पद भरे जा चुके हैं और 4 पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। श्री साय ने बताया कि राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया चल रही है। इनमें CGPSC के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक, निलंबित उप सचिव सौम्य चौरसिया, पाठ्यपुस्तक निगम के तत्कालीन महाप्रबंधक प्रेम प्रकाश शर्मा और अभनपुर के तत्कालीन SDO निर्भय कुमार शामिल हैं। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान भारत माला परियोजना में मुआवजे का मुद्दा भी गूंजा। नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने एक प्रश्न के जरिए जानना चाहा कि कितने भूस्वामियों और शासकीय भूमि के मुआवजे का वितरण कर दिया गया है। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज सदन में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। आबकारी घोटाला मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम आज पूछताछ के लिए रायपुर स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन पहुंची। सूचना मिलते ही कांग्रेस की लीगल टीम भी कांग्रेस भवन पहुंच गई। ईडी की टीम ने कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू से पूछताछ की। बाद में श्री गैदू ने बताया कि ईडी के अधिकारियों ने सुकमा जिले के कांग्रेस कार्यालय भवन के निर्माण को लेकर कई जानकारियां मांगी हैं। इस संबंध में समन जारी करते हुए 27 फरवरी तक जवाब पेश करने के लिए कहा गया है। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि ईडी केंद्र और राज्य सरकार के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए जन सहयोग से रायपुर का प्रदेश कार्यालय बनाया था। गौरतलब है कि ईडी आबकारी घोटाला मामले में राज्य की कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कवासी लखमा इस समय जेल में है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज तीसरे और अंतिम चरण के परिणामों की घोषणा की गई। इसी के साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता को प्रभाव शून्य करने की घोषणा कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने मतदाताओं के साथ ही निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है।
नगरीय निकायों के चुनाव 15 फरवरी को समाप्त हुए थे और ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत चुनाव का अंतिम चरण जो हुआ था उसके परिणामों की घोषणा आज की गई है और उसके बाद आचार संहिता भी समाप्त घोषित कर दिया गया है। इसमें हर स्तर के अधिकारी और कर्मचारी पुलिस बल को आयोग की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इनके साथ साथ मैं मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बीजापुर जिले में आज 9 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। बीजापुर के SDOP विनीत साहू ने बताया कि इनमें से 4 माओवादियों पर कुल 23 लाख रुपए का इनाम घोषित था।
माओवादी संगठन में कार्यरत 8 लाख के इनामी पार्टी सदस्य, AOB डिवीजन में कार्यरत 5 लाख रुपए के इनामी ACM, जगरगुंडा एरिया कमेटी एवं दक्षिण सब जोनल ब्यूरो में कार्यरत 5 लाख के इनामी 2 ACM सहित कुल 23 लाख रुपए के 4 इनामी माओवादियों सहित कुल 9 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने पर इन्हें उत्साहवर्धन के फलस्वरूप 25,000 रुपए नगद प्रोत्साहन की राशि प्रदान की गई है।
राजधानी रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में नशे का कारोबार करने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनकी करीब 4.25 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव ने बताया कि इस मामले में पुलिस स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट SFEMA के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करती है।
यदि कोई आरोपी जो NDPS के माध्यम से संपत्ति अर्जित करता है या उस प्रकार की संपत्ति अर्जित करने का हमें शक आता है तो उसको हम फ्रीज कर लेते हैं और उसको SFEMA के माध्यम से, जो SFEMA के सक्षम अधिकारी है मुंबई में बैठते हैं, उस फ्रीजिंग ऑर्डर को कंफर्म कराते हैं और बाद में वो संपत्ति जो है राजसात की जाती है।
प्रदेश के कथित CD कांड मामले में आज रायपुर कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सलाहकार विनोद वर्मा सहित मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका, विजय पंड्या और विजय भाटिया उपस्थित थे। सुनवाई के बाद बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि आज कोर्ट में CBI बनाम कैलाश मुरारका और अन्य के मामले में बहस हुई। CBI ने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। 4 मार्च को बचाव पक्ष के वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे। प्रदेश की 5 सेंट्रल जेल, 20 जिला जेल और 8 सब जेल सहित कुल 33 जेलों में बंद कैदियों ने आज प्रयागराज से लाए गए गंगाजल से स्नान किया। कैदियों ने इस अवसर पर सामूहिक प्रार्थना में भी हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये आयोजन कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के उद्देश्य से किया गया जिससे उनमें आत्मशुद्धि और सकारात्मक सोच विकसित हो सके। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कल से वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है जो 28 फरवरी तक चलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कल वित्तीय साक्षरता सप्ताह का शुभारंभ किया। इस वर्ष का विषय है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। कार्यक्रम के दौरान गृहिणियों के लिए वित्तीय योजना, कामकाजी महिलाओं के लिए बचत और जोखिम प्रबंधन के साथ ही महिला उद्यमियों के लिए ऋण प्राप्त करने पर FLW के उप विषयों को कवर करने वाले 3 पोस्टर जारी किए गए। ये पोस्टर ब्रेल लिपि में भी उपलब्ध कराए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन संदेशों पर आधारित भारतीय सांकेतिक भाषा वाले वीडियो भी जारी किए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के मध्य और उत्तरी भाग में 1 मार्च तक तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ के में 2 मार्च तक तापमान में वृद्धि हो सकती है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में हल्के बादल छाए रह सकते हैं।
प्रदेश के मध्य और उत्तर भाग में 1 मार्च तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है, जबकि बस्तर संभाग में 2 मार्च तक 3 डिग्री के आसपास न्यूनतम और अधिकतम तापमान में वृद्धि संभावित है।
और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बस्तर जिले के चित्रकूट में आयोजित दो दिवसीय चित्रकूट महोत्सव का कल शाम समापन हो गया। इस महोत्सव में खेलकूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जांजगीर चांपा जिले में आयोजित शिवरी नारायण महोत्सव का कल समापन होगा। महोत्सव के अंतिम दिन कवि सम्मेलन, कवियत्री और गायिका अनामिका अंबर अपनी प्रस्तुति देंगी। और कोरबा जिले में कटघोरा वनमंडल के केंदई और जटगा रेंज में इन दिनों 50 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथियों को खदेड़ दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बजट सत्र के दूसरे दिन आज विधानसभा में अघोषित बिजली कटौती, बिलासपुर जिले के लोफंदी में शराब पीने से हुई मौतों के साथ ही अरपा नदी में प्रदूषण के मामले गूंजे। आबकारी घोटाले मामले की जांच के संबंध में ईडी की टीम आज रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंची। बीजापुर जिले में 23 लाख के चार इनामी सहित 9 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और प्रदेश की 33 जेलों में बंद कैदियों ने आज प्रयागराज से लाए गए गंगाजल से किया स्नान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।